खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन का शुक्र है कि उसका कलाम हमारा रहनुमा है, क्योंकि इंसान गुमराह हो सकता है, इंसान रास्ते से भटक सकता है, लेकिन खुदा का कलाम कभी भी भटकने की राह पर लेकर नहीं जाता। क्योंकि खुदा सब कुछ जानता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है बाइबल मुकद्दस में? चुपान कहा गया है। ऐसा चरवाहा कहा गया है जो जानता है कि उसकी भेड़ों की जरूरत क्या है, जो जानता है कि उसके भेड़ों की मंजिल कौन सी है, वो जानता है कि किस जगह पर उसकी भेड़ों को प्यास लगेगी, और वो महफूज जगह है जहां पर उन्हें खाने की जरूरत है, और वो जानता है कि किस तरह जंगली जानवरों से अपनी भेड़ों को वो लड़कर या उनको महफूज रख सकता है। सो खुदा का शुक्र है कि उसका कलाम हम सब के पास है। खुदा का शुक्र है कि हम सब जो पढ़ सकते हैं हमारे लिए बाइबल मौजूद है, जो नहीं पढ़ सकते सुनाने वाले खुदा के लोग मौजूद हैं। हम खुदा का शुक्र करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी कभी भी पूरे तौर पर कर नहीं सकेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सालों साल ही नहीं जाते, और बहुत दफा ऐसे लोग हैं कि इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और उन्हें मसीह मौत की, मसीह खुदावन की खबर दे। तो आप बहुत ही बाबरकत लोग हो कि खुदावन हर सुबह अपने कलाम की जिंदा और ताज़ा तौफीक बख्श सच्चाई हम सब पर जाहिर करता है। तो आज हम इस तारीकी से भरी हुई दुनिया में खुदा के कलाम में से पालूस रसूल के वसीला से उस नुक्ते पर नजर करेंगे जिसके बारे में आज बहुत सी गलत सोचें पाई जाती हैं। सो नए अहदनामा में से इफिसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका चार बाप, उसकी आज हम सिर्फ पांचवीं आयत पढ़ेंगे, और पांचवीं आयत में यूं लिखा है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का बंदा पालूस रसूल, जैसे हमने कल देखा था कि कहता है एक ही खुदावंद है, यानी कि वो खुदावंद जिसने सलीब पर जान दी, हमारे लिए मरा, मुर्दों में से जी उठा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। ना कि कोई दुनिया का शहंशाह, ना कि कोई प्रेसिडेंट, ना कि कोई मशीर, वजीर या कोई और, वो सब आरजी है। जब पालूस रसूल कहता है एक ही खुदावंद है, तो वो यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है कि जो अबदी है, जिसके बारे में अब्रानियों का लिखने वाला मुसन्नफ अब्रानियों के खत में कहता है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी था, आज भी है, और अब तक रहेगा। इसीलिए मुकाशवा की किताब में उसे कहा गया है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, क्योंकि इस दुनिया में आला दर्जे वाले लोगों को बहुत दफा पुरानी जुबानदारी में, जैसे यूनानी सोच में, अगर कोई हाकम होता था तो हाकम के लिए लफ्ज इंग्लिश का लॉर्ड और उर्दू में खुदावंद इस्तेमाल किया जाता था। यूनानी में उसे हाकम या सरदार या बादशाह या शहंशाह कहा जाता था। तो पालूस रसूल यीशु मसीह के बारे में कहता है कि वही तमाम खुदावंदों का खुदा है, कि अगर कोई अपने आप को बद्रुहें, अपने आप को आला दर्जा देती हैं, तो वो कहता है कि वो कुछ भी नहीं, यीशु मसीह है जो सबसे आला है। तो ये बात हमने सीखी थी, और इस बात को हमें मसीही होते हुए याद रखने की जरूरत है कि यीशु मसीही है जिसके बारे में लिखा है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। और दूसरी बात, एक ही ईमान है। जैसे हमने कल देखा था कि यूनानियों का ईमान था कि वो इर्तमस देवी की पूजा करते थे, रोमियों का ईमान था कि वो रोमी शहंशाह को अपना हाकम मानते थे, फ़राउन के दौर में पुराने अहदनामों में जिक्र मिलता है कि फ़राउन अपने आप को खुदा समझता था और खुदा ने मूसा को भेजा कि उनको जाकर इस ईमान के बारे में बता कि मैं इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा हूँ। तो एक ही ईमान के बारे में जब पालूस कहता है तो वो ये कहता है कि यीशु मसीह पर हमारा ईमान है, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, हमारा ये ईमान है कि खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, खुदा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि वो वापस आएगा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देगा और वो देता भी है। सो हमारा ईमान ये है, जैसे हमने कल देखा था कि हिंदू लोग कहते हैं कि 7 दफ़ा मरोगे और 7 दफ़ा फिर पैदा होगे। बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई तालीम नहीं मिलती, ये उनका ईमान है। और बहुत से अकीदे पाए जाते हैं कि आप जब मरोगे तो पाताल में जाओगे और वहां पर पाताल में जाकर अगर आपके पीछे कोई शुक्रगुजारी या रुपया पैसा या हदिया देगा तो शायद आपकी क्या हो जाए, रहाई हो जाए। बाइबल मुकद्दस ऐसा नहीं कहती, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम मसीहियों का ईमान क्या है, कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। सो एक ही ईमान है और वो ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर। तो आज हम जो तीसरी बात देखेंगे, एक ही बपतिस्मा। बाइबल मुकद्दस में जब हम लफ्ज बपतिस्मा को देखते हैं तो हमें मुख्तलिफ 7 बपतिस्मों का जिक्र मिलता है, 7 मुख्तलिफ बपतिस्मों के बारे में तालीम दी गई है। लेकिन यहां पर जब खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है एक ही बपतिस्मा है, तो वो कलीसिया को जो उस वक्त इफिसस में मौजूद थी उनको इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये कलीसियाई बपतिस्मा जिसे कहते हैं रूहुल कुदस का बपतिस्मा, रूहुल कुदस का बपतिस्मा। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं बहुत दफा बपतिस्मे की तालीम को तरोड़ मरोड़ कर बयान किया जाता है, और ये कब होता है, जब हम बाइबल मुकद्दस को दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ते। जब हम कान खींचेंगे और लात खींचेंगे तो क्या होगा, मे सही मेल मिलाप नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी वजन को हम खींच रहे हैं और एक साइड पर 20 लोग हों और एक साइड पर 5 लोग, तो गाड़ी किस तरफ जाएगी, उस तरफ जिस तरफ 5 लोग हैं या 20 लोग, 20 लोग। सो तवाजन बहुत ही जरूरी है, यानी कि हमें वजन दुरुस्तगी बहुत ही लाजमी है। सो जब यहाँ पर पालूस कहता है एक ही बपतिस्मा है, तो वो कलीसिया के बारे में कहता है कि रूहुल कुदस का बपतिस्मा। ये कब होता है, जब कोई खुदावंद यीशु पर ईमान लाता है। मेरे साथ देखें गलतियों, मेरे साथ निकालें गलतियों उसका 3 बाब उसकी 26वीं और 27वीं और 28वीं आयत में। ये वो बपतिस्मा है जिसे कहा जाता है कि किसी एक जगह से हमारी दूसरी जगह पर तब्दीली हो जानी। इसके बारे में खुदा का बंदा, ये आप किताब देख रहे होंगे, इस किताब में खुदावन के बंदा पास्टर जीन ने बपतिस्मे के 7 मुख्तलिफ जो बपतिस्मे हैं उनको बयान किया है, और बपतिस्मे के जो मायने हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते थे, बपतिस्मे का जो लफ्ज हाल माजी में इस्तेमाल किया गया था, ये 900 सदी में, यानी कि यीशु मसीह से 900 सदी पहले का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और इसके इस्तेमाल करने का मतलब क्या था, कि किसी चीज की फितरत या नौयत को तब्दील करना, कोई चीज का बदल जाना एक से दूसरी हालत में। मिसाल के तौर पर जब हम दुपट्टा रंग करवाने के लिए लेके जाते हैं दुकान पर, तो वो किसी ना किसी रंग का होता है, काला सफेद नीला पीला, ऐसा ही होता ना जी। तो अगर हम उसे कोई रंग करवाना चाहे तो रंग करने वाला क्या करता है, उसको दुपट्टे को लेता है और उसे रंग देता है। दुपट्टा वही है लेकिन उसकी हालत बदल गई। वैसे ही जो लफ्ज बपतुस्मा है, जब 900 सदी में यीशु मसीह से पहले ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया तो इसके जो मकसद होते थे, खासकर जो उस दौर के सिपाही या जंगी सूरमा होते थे, वो अपनी तलवारों को क्या करते थे, उनको बपतिस्मा देते थे। बपतिस्मा वो किस तरह देते थे अपनी तलवारों को, वो अपने हथियारों को अच्छी तरह गर्म करते थे। हम सब जानते हैं कि जब तलवार बनती है तो उसे आग में पकाया जाता है, तेज किया जाता है। वो आग अपनी तलवारों को चंगी तरह, जिसे कहते हैं, लाल करके उनको तेज करके तैयार करते थे, और तब तक तैयार करते रहते थे जब तक उनको अंदाजा ना हो जाए कि वो बिल्कुल तैयार है। तो जब तैयार हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उस तपते हुए लोहे को पानी में डुबो देते थे, और वो इससे समझते थे कि अब ये चीज तैयार हो गई है हमारे इस्तेमाल के लिए। सो उसके लिए लफ्ज जो 900 सदी में इस्तेमाल किया गया था वो क्या था, बैप्टिजो, जिसका मतलब है बपतिस्मा देना या किसी धातु को दूसरी चीज में डुबोना। और इसी तरह रूमी हुकूमत के दौर में जो सिपाही होते थे जिनको स्पार्टन कहते थे, वो भी अपने भालों को, ये भाला किस तरह का होता था, उस डंडे नुमा होता था और उसके आगे लोहे की वो चीज लगी होती थी जिससे वो इंसानों को घाव देते थे या मारते थे, जिसे बर्छी भी हम कह सकते हैं, भाला वो, और अपने तीरों को जब वो तैयार करते थे तो उनको भी वो पकाते थे, गर्म करते थे, और जब वो तैयार हो जाते थे तो उनको वो खून में डुबोते थे। खून में जब डुबो लेते थे तो वो कहते थे कि इनकी मखसूसियत हो गई है, अब ये हथियार जंगी हथियार बन गए हैं, खून का मजा इन्होंने चख लिया है। तो लफ्ज बपतिस्मा जब पालूस यहाँ पर इस्तेमाल करता है तो वो ईमानदारों के लिए कहता है कि जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, हम जिस्मानी तौर पर नहीं बदलते, हमारे हाथ पांव किसी और जगह नहीं जाते। वो रूहानी तौर पर कहता है कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, रूहुल कुद्दस का हमें बपतिस्मा मिलता है, किस वजह से, यीशु पर ईमान लाने से, तो हमारी रूहानी हालत बदल जाती है। हम जिस्मानी हालत से रूहानी हालत में क्या बन जाते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां। जिस्मानी हालत में जब हम बपतिस्मा नहीं लेते, नए सिरे से पैदा नहीं होते, तो हम क्या हैं, मौत के फर्जंद हैं, अबलीस के पैरोकार हैं। जिस्मानी और रूहानी हालत में उस पैगाम के मुताबिक जिसके बारे में पालूस ने कहा, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, खुदा से जुदाई है, खुदा और हमारे दरमियान क्या होती है, तारीकी की वो बड़ी दीवार खड़ी होती है जिसे गुनाह कहा जाता है। तो लेकिन जब हम या कोई भी यीशु को कबूल करता है तो उनकी क्या होती है, रूहानी तौर पर हालत बदल जाती है, किसके वसीला से, बपतिस्मे के वसीला से। और ये बपतिस्मा कौन सा है, रूह कुदस का बपतिस्मा, जिसके बारे में पालूस कहता है एक ही बपतिस्मा है। तो मेरे साथ देखिए गलतियों 3 बाप उसकी 26वीं आयत से, यहां पर भी वो कलीसिया को लिखते हुए कहता है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो यीशु मसीह में है खुदा के फर्जंद हो। किसके वसीला से, उस ईमान के वसीला से जो हम उस पर रखते हैं, क्या हो, खुदा के फर्जंद हो। 27वीं आयत, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जब आपको मैंने बताया कि उस तलवार को तैयार करके पानी में डुबोते थे और कहते थे कि बपतिस्मा हो गया, जब उन तीरों को और भालों को, बर्छियों को तैयार करके खून में डुबोते थे और कहते थे कि उनकी मखसूसियत होगी, उनकी हालत बदल गई, अब वो जंगी हथियार है, वैसे ही पालूस कहता है कि ईमान के वसीला से हम सब की भी रूहानी हालत तब्दील हो जाती है, और हम फर्क फख्र से कह सकते हैं कि हम खुदा का मकदस हैं। बपतिस्मा जो हमको रूहुल कुद्दस का होता है, इसकी तालीम नए अहदनामे ही में पाई जाती है, और जब हमें बपतिस्मा होता है रूहुल कुद्दस का ईमान के वसीला से, तो हम क्या बन जाते हैं, खुदा का मकदस, खुदा के रहने की जगह, खुदा की कलीसिया, खुदा खुदा के लोग, खुदावन खुदा के बेटे और बेटियां और उसकी उम्मत, उसके छुड़ाए हुए लोग, यानी कि बहुत सी बातें हमारे नाम और हमारे साथ लग जाती हैं जिसमें हम कह सकते हैं हमारी शिनाख्त बदल जाती है। जैसे दुपट्टे को किसी रंग में पाते हैं तो वो उसका दुपट्टा तो वही होता है लेकिन रंग तब्दील हो जाता है, वैसे हम वैसे ही रहेंगे, हमारे कान किसी और जगह नहीं लग जाएंगे, वैसे ही रहेंगे लेकिन हमारी रूहानी हालत बदल जाती है, हमारी शिनाख्त क्या हो जाती है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और इसे क्या कहा गया है, रूहुल कुदस का बपतिस्मा जो हर एक को होता है जब वो यीशु पर ईमान लाता है। दूसरे और बपतिस्मों का जिक्र मिलता है आगे चलकर हम देखेंगे, जिसमें चार बपतिस्में रस्मी हैं, तीन बपतिस्में जो कि इतना क्या कहते हैं हकीकी हैं। लेकिन आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं, पालूस ने कहा एक ही बपतिस्मा है। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, पहला करंथियों उसका 12वां बाब, पहला करंथियों उसका 12वां बाब गालबन उसकी 13वीं आयत में भी पालूस रसूल इस कलीसियाई बात को जो होती है जिसमें खा कोई यहूदी हो खा कोई यूनानी हो किसी भी मजहब से हो, जब कोई यीशु को कबूल करता है कि वो मेरा नजात दहिंदा है, कि वो मेरा खुदावंद है जो अबदी है, जिसने मेरे गुनाहों के लिए जान दी है, जब वो इकरार करता है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और आसमान पर गया है और वापस आएगा, तो उसे ये क्या होता है, रूह कुदस का बपतिस्मा मिलता है। इसलिए पालूस कहता है पहला करंथियों उसका 12वां बाप उसकी 13वीं आयत से, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो खा यूनानी खा गुलाम खा आजाद एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। उसका यहां पर भी कहने का मकसद यही है कि खा यहूदी हो खा यूनानी हो खा पठान हो खा हिंदू हो खा मुस्लिम हो खा कोई भी हो, जब कोई यीशु को कबूल करता है तो वो रूह कुदस का वसीले से खुदा का क्या बन जाता है, बदन बन जाता है, जिसे कलीसिया कहा गया है। इसलिए पालूस रसूल यहां पर कहता है एक ही बपतिस्मा है। इसका हरगिज मतलब नहीं कि वो दूसरे बपतिस्मों को ना कहता है, लेकिन जिसके बारे में वो इफिसियों 4 बाब उसकी 5वीं आयत में कहता है वो है एक ही बपतिस्मा, यानी कि रूह कुदस का बपतिस्मा जो ईमानदारों को होता है। क्यों आप तक ये सच बताने की जरूरत थी, क्योंकि आज के माहौल में लोग कहते हैं जिन्हें खुदा के खादम कहा जाता है, बहुत से पादरी साहब गलत तालीम देते हैं, कब, जब वो कहते हैं कि जी निजात आपको कैसे मिलेगी, जब आप गोता लगाएंगे, निजात पानी के बपतिस्मे से नहीं। बहुत दफा लोग कहते हैं कि जी आपको रूह कुदस मिलेगा जब आप पर गैर जबाने उतरेंगी, ये भी बिल्कुल गलत सोच है। बहुत दफा लोग कहते हैं कि जी आप दुखों का जब बपतिस्मा आपको मिलेगा तब आप जाकर सच्चे मसीही बनोगे, ये भी गलत सोच है। बहुत दफा लोग कहते हैं कि जी हमें आग का बपतिस्मा मिलना चाहिए, आग का बपतिस्मा दूसरी मौत को कहा गया है, इसलिए वो भी बात गलत है। आगे चलकर हम सब बपतिस्मों पर गौर करेंगे, क्यों, क्योंकि जरूरत है। आप जानते होंगे ताकि अगर आपको कहे कि भाई जी आओ मैं आपको आग का बपतिस्मा दूंगा, तो याद रखें कि आग का बपतिस्मा वो बपतिस्मा है जिसके बारे में काशरा की किताब में लिखा है कि दूसरी मौत हमेशा तक, वो ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया। पानी का बपतिस्मा जो यूहन्ना का यीशु मसीह ने किया वो एक और बात है। सो इन तमाम बपतिस्मों के बारे में हम आइंदा वक्त में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है एक ही बपतिस्मा वो कलीसिया से कह रहा है कि तुम सब ने जब यीशु मसीह का कलाम सुना, उसे दिल में कबूल किया और खुशखबरी पर ईमान लाए, तो तुम पर पाक रूह की मोहर लगी। और ये पाक रूह की मोहर क्या है, खुदा का रूह तुम्हारे जिंदगियों में आया और तुम कलीसिया बने। सो कभी भी फरेब ना खाएं, बल्कि सच की तालीम को, बाइबल मुकद्दस को गौर से सीखें। सो आए हम खुदा के हजूर झुके।
के बारे में जानना चाहता हूँ।